अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान का न्यूज एंड करंट अफेयर चैनल है। इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान राहत खान। और स्टूडियो में मेरे साथ साथी मेजबान मौजूद हैं नुमान खान।
सलाम कबूल कीजिए।
आइए सामीन आपको लिए चलते हैं खेलों की दुनिया में। अबू जहबी टेस्ट सनसनी खेज मोड़ पर। यूएई में बॉलर्स का राज। क्रिकेट को नया रंग मिल गया। सना मीर का सितारा गर्दिश में। कॉमनवेल्थ गेम्स की शमा पाकिस्तान में रोशन। चीन में एहसामुल हक को चैन मिल गया। पाकिस्तान शाहीनों के लिए खतरे की घंटी। और ऐसा सेगमेंट पेश किया जाएगा आपके लिए स्पोर्ट्स गैलरी। जहां जहां तक मेरी आवाज सुनी जा रही है सभी सामीन को कहेंगे स्पोर्ट्स वर्ल्ड में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सभी सुनने वाले खैर व आफियत से होंगे। यकीनन इंतजार होगा आपको आज के चैलेंज का, सवाल का। तो बढ़ते हैं नुमान खान की जानिब और पूछते हैं आज का सवाल। जी नुमान,
बहुत शुक्रिया रहा सभी सुनने वालों को खुशामदीद प्रोग्राम में हम कहेंगे। और तकरीबन एक हफ्ते के बाद हमारी आपसे मुलाकात होती है इस माइक्रोफोन के तवस्सुत से। और जहां तक जी आज के सवाल का ताल्लुक है, तो आज का सवाल, क्योंकि हम बॉलर्स ही की बात करेंगे आज, बड़े सनसनीखेज बड़ा क्रंच मोमेंट इस वक्त चल रहा है अबूधाबी में पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका फर्स्ट टेस्ट मैच में। और इसीलिए हमने जो सवाल है वो भी कुछ बड़ा चुन के आपसे पूछा है। और पूछना हमें आपसे ये है कि बताएं पाकिस्तान के खिलाफ अब तक टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का एजाज किस बॉलर के पास है। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेटें किस बॉलर ने हासिल की हैं, उस बॉलर का नाम और उसकी विकेटों की तादाद, ये दोनों आपने हम तक पहुंचानी है
जी। और आपने बताना है इस नंबर पर, यानी कि आपकी और हमारे रابطے का नंबर 0519215377 9153789215379920500, यानी कि 0551 रावलपिंडी और इस्लामाबाद का सिटी कोड 92153779153789215379920577 चारों टेलीफोन लाइन्स आपके लिए ओपन कर दी गई हैं। बात करेंगे अबू जहबी टेस्ट के हवाले से। पहला टेस्ट पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान अबू जहबी में जारी है और पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। सेकंड इनिंग जो है वो जारी है, पाकिस्तान जो है वो बैट कर रहा है, लेकिन काफी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है हमारी टीम। और क्योंकि श्रीलंका ने जो है इनको टारगेट दिया है 136 रन का, यानी कि टोटल उन्होंने 138 रन बनाए, जिसमें से दो जो है उन्होंने कैंसिल अगर कर दिए जाए, यानी कि उनके ऊपर जो हमने बर्तरी हासिल की थी दो रन की, उनको खत्म करने के बाद जो है 136 रन का जो है टारगेट है पाकिस्तानी टीम के लिए। लेकिन अभी तक पांच खिलाड़ी जो है वो आउट हो चुके हैं, यानी कि मेन की प्लेयर जो है हमारे पाकिस्तानी वो जो है वो आउट हो चुके हैं। 77 रन जो है वो बनाने में कामयाब हुई है टीम। काफी स्लो जो है रेट चल रहा है, रन रेट जो है पाकिस्तान की जानिब से जारी है। और पांच खिलाड़ी जो आउट हुए हैं उनमें अगर बात की जाए तो शान मसूद और समी असलम जो कि हमारे ओपनर हैं, शान मसूद 7 रन बनाकर आउट हुए, समी असलम 2 रन बनाकर आउट हुए, असद शफीक 20 रन बनाकर आउट हुए, अजहर अली जिनके ऊपर काफी खदशात थे कि अनफिट प्लेयर हैं, लेकिन उनको फिर भी जगह दी गई कि जी फिट प्लेयर हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जीरो पर ही वो वापस लौट कर चले गए। बाबर आजम 3 रन बनाने में कामयाब हुए और इस वक्त हारिस सोहेल और सरफराज जो है ये दोनों क्रीज पर मौजूद हैं। और खुदा करे कि ये जोड़ी जो है ये कामयाब रहे और ये जो एक टारगेट हमें दिया है इसको हम चेस करने में कामयाब हो जाएं। नुमान, दो चीजें, एक तो ये कि सेकंड इनिंग जारी है, पाकिस्तान के ऊपर अपने शहीदों पर ब्लेम करने की बजाय सबसे पहले मैं ये बात करूंगी, क्योंकि पांचवा दिन जारी है और जो पिच की सूरत हाल है वो काफी ज्यादा जो है अफसोसनाक है कि बहुत ज्यादा रफ हो चुकी है, क्रैक्स पड़ चुके हैं उसके ऊपर और बॉलर्स का फुली राज है उसके ऊपर। और श्रीलंका के बॉलर्स माना कि बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं लेकिन इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करते जितनी उनको स्पोर्ट जो है वो पिच कर रही है। तो इस सूरत हाल में हमारे पांचों की प्लेयर का आउट हो जाना, क्या कहेंगे आप?
बिल्कुल राहत, पाकिस्तान की टीम को अब यकीनन कमी महसूस हो रही होगी
मिसबाह
और यूनुस खान की, हम उनका जिक्र जरूर करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है एक अच्छे स्कोर की, एक अच्छी बैटिंग की। लेकिन हम यहां पर बड़े एक जिसे हम कह सकते हैं कि अफसुर्दगी के साथ ये बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग में बहुत ज्यादा वीकनेसेस नजर आ रही हैं। फर्स्ट इनिंग में हमने देखा कि नो डाउट पाकिस्तान ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया, लेकिन जो आपको मैच जितवाने के लिए सेकंड इनिंग चाहिए होती है उसमें आपको परफॉर्म करना बहुत जरूरी है और उसी में दुनिया की अक्सर टीमें जो हैं वो क्लैश कर जाती हैं और टेस्ट मैच हार जाती हैं। बांग्लादेश की अगर हम बात करें, बांग्लादेश की टीम की भी यही कमजोरी है कि वो सेकंड इनिंग में परफॉर्म नहीं कर पाती,
अच्छा स्कोर जो है वो बनाने में काम।
फर्स्ट टेस्ट कई दफा हमने उनको, अगर आप हमारे सुनने वाले यकीनन उनके जो रिकॉर्ड्स में दिलचस्पी रखते हैं उनको ये बात अच्छी तरह पता होगी कि कई ऐसे मौके हैं कि जहां बांग्लादेश ने काफी ज्यादा रन्स किए, अभी न्यूजीलैंड में उन्होंने दौरा किया और 500 से ऊपर रन्स किए, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश जो है उस टेस्ट मैच में बांग्लादेश को बेइंतहा मुश्किल पेश आई। तो पाकिस्तान एक बहुत एस्टैब्लिश कंट्री है और खेल के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, तो अब जो सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है वो काफी तश्वीशनाक है। और खासतौर पर अब अगर हम ये कहें कि ये सब नए प्लेयर्स हैं तो ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन इतनी ज्यादा
नए प्लेयर नहीं,
बैट्समैन को फेवर नहीं देंगे हम इस चीज का, क्योंकि बाबर आजम भी काफी अरसे से खेल रहे हैं, असद भी खेल चुके हैं, अजहर अली 5000 रन उन्होंने स्कोर किए हैं अभी अपने टेस्ट क्रिकेट में मुकम्मल किए हैं। तो इन पांचों बैट्समैनों को हम ये जरूर कहेंगे कि बैटिंग कोलैप्स होता है टीमों के साथ, अक्सर ही मामला चलते हैं, लेकिन एक एंड आपका ऐसा होना चाहिए कि जो सर्वाइव करे, जो सूरत हाल को देखे और फिर अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे।
सारी जिम्मेदारी सरफराज अहमद के कंधों पर आ चुकी है
जी, बिल्कुल। और ये पाकिस्तान का लास्ट रिकग्नाइज प्लेयर है जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, उसके बाद टेल एंड की जो है बारी शुरू हो जाएगी। तो कोशिश अब इन दोनों की यही है कि रन भी किसी तरीके से बने और टाइम को भी इन्होंने देखना है और साथ साथ बॉलर्स पे भी चेक रखना है, फील्डिंग पे भी चेक रखना है। तो काफी ज्यादा यकीनन दबाव तो होगा दोनों प्लेयर्स पे और इस वक्त, और जिस तरीके से सरफराज जो हैं वो अपने ऊपर दबाव लिए बगैर जो है अपनी क्रिकेट खेलते हैं,
42 रन अभी तक बनाने में कामयाब
जी, दोनों की शराकतदारी में राहत जो है 42 रन का इजाफा हो चुका है। तो बड़ा स्लो एंड स्टडी दोनों प्लेयर्स जो है जा रहे हैं और आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं। तो रियल टेस्ट ऑफ नर्व्स है जी, यहां पर हम बात करेंगे कि जो डेब्यू कराया है पाकिस्तान ने हारिस सुहेल को, राहत बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा कर रहे हैं, बड़ा टेम्परामेंट शो कर रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में भी इन्होंने 70 रन किए और अब यहां पर हम उम्मीद रखते हैं कि टिल द एंड जो है वो पाकिस्तान को लेकर जाएंगे।
78 रन और 5 खिलाड़ी आउट और कुछ और ही सिचुएशन अभी भी हमें ग्राउंड में दिखाई दे रही है, ये आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो पाकिस्तान का न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल आपके लिए पेश करता है मॉर्निंग शो सुबह बखैर पाकिस्तान, रोजाना 8:10 से 10 बजे तक, जिसमें आप सुन सकते हैं अहम कौमी और बैन अलाकवामी खबरें और उन पर तज्जिये, मुल्क भर से हमारे नुमाइंदों की बराह रास्त रिपोर्ट्स।
आज का दिन तारीख के आईने में साइंस और टेक्नोलॉजी की खबरें, तजारती दुनिया का हाल, खेल के मैदान से ताजा तरीन मालूमात और मौसम का हाल।
न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल, आप तक पाकिस्तान और दुनिया भर से ताजा तरीन मालूमात पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया।
रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज, हर दम हर लम्हा आपके साथ।
रेडियो पाकिस्तान के न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल से आप सुनते हैं प्रोग्राम नया दिन, पीर से हफ्ता तक सुबह 10:05 से 11 बजे तक। इस प्रोग्राम में आप सुन सकते हैं दुनिया में रोनुमा होने वाले अहम वाकयात, कराची से खैबर तक वतन अजीज का हाल अहवाल और मुल्की व बैनुल अक्वामी उमूर के माहिरीन की खुसूसी तज्जिये। आप घर में हैं या सफर में या कर रहे हैं खेतों में काम, रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज हर दम हर लम्हा आपके साथ।
वेलकम बैक, ये रेडियो पाकिस्तान का न्यूज एंड करंट अफेयर चैनल है। इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड आप सुन रहे हैं। पाकिस्तान 78 रन बनाने में कामयाब हुआ है और अंगना हैरात ने छठा शिकार जो है वो किया है, यानी कि इस इनिंग्स में तीसरा शिकार अपना मुकम्मल किया है। बड़ी ही की विकेट लेने में कामयाब हुए हैं हमारे कैप्टन सरफराज अहमद को उन्होंने आउट किया है। और अभी हम यही बात कर रहे थे कि सारी जिम्मेदारी जो है वो अब सरफराज के कंधों पर है। अगर तो सरफराज काफी देर तक क्रीज पर मौजूद रहे तो ये टेस्ट हमें अपना होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब मुश्किल जो है वो पाकिस्तान के लिए और बढ़ चुकी है। हसन जो है एक बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन क्या अच्छे बैट्समैन भी हैं ये जानते हैं नुमान से। नुमान, हसन आए हैं क्रीज पर इस वक्त
हसन की हम बात करेंगे
साथ निभाने के लिए।
जी, हसन ने फर्स्ट इनिंग में 2 छक्के भी लगाए थे और काफी अग्रेसिव लगते हैं हमें देखने में कि अपनी बैटिंग में जो है वो काफी तेज शॉट्स की तरफ जाते हैं, लेकिन यहां पर अब जोश ज्यादा होश की जरूरत है पाकिस्तान।
प्रेशर जो भी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं सरफराज की, जिस तरह से विकेट ली है कि एक जल्दबाजी में रन लेने की कोशिश की गई, क्या टाइम को जहन में रखते हुए सरफराज ने यह फैसला लिया कि जल्दी जल्दी सिंगल रन जो है वो बनाए जाए?
राहत, जिसे हम यूं कहेंगे कि सरफराज ने बड़ा एक बोल्ड डिसीजन लिया अपनी विकेट के हवाले से कि बहुत आगे जाके उन्होंने खेला है रंगना हैरात को, और इस किस्म की सिचुएशन में आपको अपनी क्रीज बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे किस तरह के भी हालात हों। आप कोशिश करें कि क्रीज में रहते हुए ही फ्रंट फुट और बैक फुट पे जाके सिंगल डबल्स निकालने की कोशिश करें, और जहां बिल्कुल आप महसूस करें कि अब मेरे पास जो है वो मेरे टारगेट जोन में गेंद है, फिर उसको खेलने की कोशिश करें। और बहरहाल वही बात है कि बैट्समैन जब तक गलतियां नहीं करते तो बॉलर्स विकेट
हासिल नहीं करते। रंगना हैरात की ये तीसरी विकेट है इस इनिंग में, और इससे पहले समी असलम और असद शफीक का शिकार कर चुके हैं। अगर फर्स्ट इनिंग्स की बात की जाए तो 93 रन देकर 5 विकेटें पाकिस्तान की हासिल की थी, और पाकिस्तानी शाहीनों के लिए जो है ये खतरे की घंटी है। जब तक रंगना हैरात श्रीलंका की टीम में मौजूद रहेंगे बैट्समैन को बहुत संभल के खेलना होगा।
जी बिल्कुल, रंगना हैरात पे अभी हम बात करेंगे, और जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ अभी नहीं राहत मुसलसल ये 20वां टेस्ट है रंगना हैरात का अगेंस्ट पाकिस्तान, और जो कुछ उन्होंने परफॉर्म किया है उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ये हमें इस वक्त जो दोनों टीमों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है राहत वो रंगना हैरात है कि जो 8 बैट्समैनों को पाकिस्तान के आउट कर चुके हैं और पाकिस्तान को शदीद मुश्किल में लाने में शीट एंकर का रोल जो है ये प्ले कर रहे हैं, और अब उनकी जो नजरें हैं जिस विकेट पर होंगी वो हारिस सुहेल की विकेट है।
बिल्कुल,
और अगर हारिस सुहेल अपना हौसला कहीं हार जाते हैं और कोई गलत शॉट की तरफ चले गए या कोई कैच ऐसा आउटस्टैंडिंग पकड़ लिया श्रीलंकन्स ने, तो फिर बहुत ज्यादा अच्छी सूरत हाल के साथ जो है श्रीलंकन्स जो है वो।
लेकिन नुमान, अगर चले पाकिस्तान बहुत सारी खामियां अभी हमें नजर आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर श्रीलंका की बात की जाए तो काफी खूबियां हमें उनमें दिखाई दे रही हैं कि फील्डिंग जिस तरह से वो लोग कर रहे हैं, डाई लगा रहे हैं जिस तरह से और फुली कोशिश कर रहे हैं कि एक एक रन को रोकने की, तो उनमें भी बहुत सारी तब्दीली आई है।
देखिए, विक्ट्री को वो स्मेल करना शुरू कर रहे हैं, अब उनको अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान को हमने अब तकरीबन जो है वो पूरी की पूरी बैटिंग को इनको हमने काबू कर लिया है और 6 हमने टॉप ऑर्डर के बैट्समैन निकाल दिए हैं, अब टेल एंडर्स जो हैं ये आना शुरू हो गए, तो वही बात है कि अब वो और स्ट्रेटेजी के साथ जो है वो अटैक करेंगे हसन अली पर, और हसन अली پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کسی ایسی شاٹ پہ جائیں کہ جو ان کی وکٹ گرنے کا سبب ہو. تو اب
یہاں پر نعمان آپ کو نہیں لگتا کہ حارث کو زیادہ سے زیادہ فیس کرنا چاہیے؟
جی بالکل, اسٹرائک انہیں اپنے پاس رکھنا چاہیے. اور لیکن دونوں پلیئرز جو ہیں وہ نئے ہیں, اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس سچویشن میں کہ جو پریشر کوکر اننگ ہے یہ فورتھ اننگ, اس میں یونس جو ہیں ہمیں بڑے یاد آ رہے ہیں اس وقت کہ وہ جس طریقے سے ایک سیمنٹڈ پلیس اپنی رکھتے تھے کہ ان کو ہلانا بہت مشکل ہوتا تھا, ٹیم بڑا جان مارتی تھی, لیکن وہ اسی صورت میں آؤٹ ہوتے تھے جب پاکستان فتح کے بالکل قریب جو پہنچ چکا تھا.
میچ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اس پر پاکستانی ٹیم جو ہے وہ 80 رنز ان کی 80 رنز پر پہنچ چکی ہے اور 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں. بات کرتے ہیں کچھ کرکٹ کے نئے رنگوں کے حوالے سے. آئی سی سی کے اجلاس میں جی نئے قوانین کا انعقاد کیا گیا ہے, کچھ آرڈرز جو ہیں وہ کیے گئے ہیں, اور پلیئرز کو مزید سنبھل کے کھیلنا ہوگا. پلیئرز کو گراؤنڈ میں جو ہے اب کوئی بدتمیزی برداشت ان کی نہیں کی جائے گی. بڑے جسے کہتے ہیں کہ اکثر پلیئرز کو ہم دیکھتے تھے کہ بڑے موڈ میں آتے تھے گراؤنڈ میں, اور اس موڈ میں جو ہے امپائر کے ساتھ بھی کچھ تھوڑی بہت باتیں ہو جاتی تھیں, ناچاکی کی صورت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی تھی, تو درگزر کر دیا جاتا تھا اس معاملات کو. لیکن اب پلیئرز کو یہ آگاہ کیا جائے گا کہ جی اب اس طرح کی چیزیں گراؤنڈ میں جو ہے وہ نہیں ہوں گی. اگر خدا نخواستہ اگر کسی پلیئر کا امپائر کے ساتھ کسی بھی بات کے اوپر جو ہے وہ جھگڑا ہو جاتا ہے یا ناچاکی کی صورت وہاں پر ڈیولپ ہوتی ہے, اگر امپائر یہ سمجھتا ہے کہ اس پلیئر کی وجہ سے میچ کے اوپر بہت برے اثرات جو ہیں وہ پیدا ہوں گے اور یہ میچ ڈسٹرب ہوگا, تو وہ ریڈ کارڈ دکھا کے اس پلیئر کو جو ہے گراؤنڈ سے جانے کے لیے کہہ سکتا ہے. یہ اتھارٹی جو ہے اس کو اب دے دی گئی ہے کہ امپائر کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی بدتمیزی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی. نعمان بتائیے, اس طرح کے جو قوانین جو ایک نت نئی چیزیں آ رہی ہیں کرکٹ کی دنیا میں, تو یہ کتنی فائدہ مند ثابت ہوں گی؟
راحت ایک کالر ہیں, شامل کریں.
چلیں جی, آج کے پروگرام کے فرسٹ کالر ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام میڈم, آپ کو بہت بہت سلام.
جی وعلیکم السلام, طارق چکوال سے کہیے کیا کہیں گے.
آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور پاکستان کی صورتحال بہت خراب ہے, اللہ کا پاکستان میچ جیت گئے.
جی بالکل, پاکستان بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ پریشر میں ہے اور بڑا پینک کریٹ ہو گیا ہے, کیونکہ 6 ہمارے بیٹسمین جا چکے ہیں اور وہ جو اسے کہتے ہیں کہ کچھ نا تجربہ کاری کہہ لیجئے, سچویشن کو ہینڈل کرنا نہیں آیا پاکستان کو, کہ یہاں پر ایک اچھی سالڈ اینڈ کی ضرورت تھی. ایک اینڈ ہمیں ایسا چاہیے تھا کہ جو وکٹ پہ سٹے کرتا, لیکن دونوں اینڈ سے جو ہے وکٹ گرنے کا سلسلہ جاری ہے.
نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی اختر حسین کہیے کیا کہیں گے.
نمان بھائی میچ ان شاء اللہ پاکستان جیتے گا ان شاء اللہ, ہمارے کیلنڈر رکھے حسن علی یاسر اور عامر اور اسرائیل کے ساتھ ان شاء اللہ جیتے گا. سوال کون سا میں نے ابھی چین کے بڑھوا.
جی جی, سوال ہمارا آپ سے یہ ہے, آپ سے کیا بلکہ سب سامعین سے یہ ہے کہ بتائیے ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کے خلاف سب سے زیادہ بالنگ کے ساتھ کس بالر نے وکٹیں حاصل کی ہیں پاکستان کے خلاف اپنے کریئر میں سب سے زیادہ؟
گریٹ کپل ریڈ 99 وکٹ, گریٹ کپل ریڈ 99 وکٹ, لیکن ابھی رنگا حیرات کے ہو گئے 594 20 میچ میں 97 وکٹ.
جی بالکل,
دبئی میں باقی ہے اور ابھی بھی 4 وکٹ ہماری باقی ہے, تو رنگا حیرات زیادہ ہو جائیں گے کپل ریڈ 99 وکٹ.
جی بالکل, آپ نے درست کہا, کپل دیو وہ بالر ہیں جنہوں نے اگینسٹ پاکستان 99 وکٹیں حاصل کی.
اصل میں رحمان بھائی, اصل میں رحمان بھائی جو ہماری ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے اس ٹیسٹ میں, تین فاسٹ بالر جو ہم نے چلائے نا, بڑی غلطی کی ہے یار. دبئی اور ابو ظہبی میں ہم نے 7 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں دو اسپیشلسٹ ہیں اور دو فاسٹ بالر, تو میرے خیال میں تیسرے جو دوسرا ٹیسٹ دبئی میں دوسرا ریگولر اسپنر چلانا چاہیے. یہ جو ہماری تین فاسٹ بالر ہیں تینوں کو ایک جیسی اسپیڈ ہے.
چلے جی بالکل, آپ کی بات درست ہے.
ٹھیک ہے اختر حسین, بہت بہت
ون ڈے میں
شکریہ اختر حسین میاں والی سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے, جواب انہوں نے درست دیا. نیکسٹ چیلنج آپ کے سامنے خاص خاص خبروں کے خلاصے کے بعد رکھا جائے گا. لیکن جب اس ٹیم کو سلیکٹ کیا گیا تھا تو اس دن بھی اختر حسین کی کال ہمارے پروگرام میں آئی تھی, تو میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کیونکہ اکثر یہ ٹیمز کے حوالے سے بہت زیادہ بات کیا کرتے ہیں, تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ اس سلیکشن کمیٹی کے فیصلے سے جو ہے وہ वो सेटिस्फाई है। तो आपने कहा था कि ये जो टीम अभी इन्होंने अनाउंस की है ये बहुत बैलेंस टीम है, बहुत अच्छी टीम है, और वही टीम जब एक अच्छी कारकर्दगी पेश नहीं करती तो फिर बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में दोबारा से आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम
जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से?
हसन इकबाल बात कर रहा हूँ।
कौन बात कर रहे हैं?
हसन इकबाल।
हसन इकबाल कहिए, क्या कहेंगे?
फवाद आलम को खिलाना चाहिए।
फवाद आलम को चले जी, अब तो आपको पता है कि प्लेइंग 11 पाकिस्तान की पहुंच चुकी है वहां पर, उसमें फवाद आलम का नाम फिलहाल नहीं है।
क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, उस चीज के कोई मशवरे दीजिए
जी। अब बताइए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए?
आसिफ को शामिल करना चाहिए।
किसको शामिल करना चाहिए?
बिलाल आसिफ को।
बिलाल आसिफ को, चलें जी, ये तो अभी एक्सपेरिमेंट की बात आप कर रहे हैं। फिलहाल तो पाकिस्तान के जो फर्स्ट टेस्ट मैच है अभी इस वक्त ये हमारी नजरों में मौजूद है। बहुत शुक्रिया भाई आपकी कॉल का, और राहत हम एक बार फिर अपने सुनने वालों को बताते चले। ताजा तरीन स्कोर कार्ड, पाकिस्तान का स्कोर हो गया है जी 88 रन 6 विकेट के नुकसान पर, 48 रन पाकिस्तान को और चाहिए। क्रीज पर हारिस मौजूद हैं 62 बॉलों पर 31 रन के साथ, और दूसरा एंड
साथ हसन दे रहे हैं। मान एक छोटी सी ये भी एक बात कि जैसे कि अभी हमारे सामिन ने भी कहा कि बहुत ज्यादा स्लो जो है ये चीजें हैं और वो स्लो रन्स भी हैं, कहीं ये आईसीसी के बाद रेस्ट की तो चीजें हमारे सामने नहीं आ रही, क्योंकि बहुत देर तक रेस्ट की है हमारे प्लेयर्स ने।
देखें एक चीज भी बड़ी काउंट करती है, आपका इंटरनेशनली एक्सपोजर कितना होना चाहिए, प्रेशर हैंडल करने के लिए सिचुएशन से बार बार जब तक आप नहीं गुजरेंगे, आपकी ड्रिल्स नहीं होंगी तो आपको अंदाजा नहीं होगा।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं और कहां से?
जी बाजी, शायद महमूद वतु बात कर रहा हूँ बागपतन से। इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेगा
जी शायद।
और अभी मुझे ये बताइएगा कि जो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का मैच था, चौथा मैच जिसमें 356 रन बनाए थे, उसकी मुझे डिटेल बता दीजिएगा।
ठीक है,
आपकी मेहरबानी होगी।
ठीक है, खास खास खबरों के खुलासे के।
और एक मेरा भांजा है अली हसनैन, उसको सलाम देना
जी। अली हसनैन अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो शाहिद की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम, और हम ही कहेंगे जी वालेकुम अस्सलाम। तो जारी है प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड। 88 रन्स 88 रन्स पाकिस्तानी टीम बनाने में कामयाब हो चुकी है, 6 की प्लेयर जो हैं वो आउट हो चुके हैं, हारिस और हसन जो हैं इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। नोमान, जो सूरत हाल सामने दिखाई दे रही है, और सभी हमारे प्लेयर्स भी दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है मैच विन कर जाएगी, विनिंग मैच खेलना और एक कांटेदार मुकाबला करना, इसमें क्या डिफरेंस है? कि मैच तो चले विन हो जाएगा, लेकिन ये बहुत स्लो रेटिंग के साथ मैच विन होगा।
जी बिल्कुल, और ये मैच बहुत कुछ सिखा के जाएगा सारे प्लेयर्स को। जब ये
टक्कर का जो मुकाबला होता है और एक जानदार मुकाबला जो होता है उसको जब आप जीतते हैं तो वो जरा खुशी कुछ और तरह की।
राहत बात यह है कि ये पाकिस्तान की तो फिर हम कह सकते हैं कि किसी हद तक नए प्लेयर्स इसमें शामिल किए गए हैं। इससे पहले पाकिस्तान की सीनियर टीम बहुत मौकों पर इस किस्म की सूरत हाल से दो चार होकर टेस्ट मैचेस को अपने हाथ से गंवा चुकी है, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये चीजें अभी चल रही हैं। अब कहां तक चलेंगी और कैसे पाकिस्तान को इन चीजों से निकलना है, मिकी ऑर्थर को अब बहुत कुछ सोच रहे होंगे, और हमें उनके चेहरे पे वो चीजें दिखाई दे रही हैं जो सब उनके तासुरात हैं कि कुछ ज्यादा वो खुश नहीं है अपनी साइड से। जाहिर है कि बींग ए कोच आप इन सारी चीजों पे यकीनन प्लेयर्स के साथ काफी डिस्कस करेंगे कि इस किस्म की सूरत हाल क्यों हुई और पाकिस्तान की बॉलिंग ने जो एडवांटेज दिया था उसका फायदा हमारी बैटिंग ने क्यों नहीं उठाया।
जी, और आप सुन रहे हैं सांबा स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 4:30 हो चुके हैं। आइए आपको लिए चलते हैं खास खास खबरों के खुलासे की जानिब।
इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंस की समाअत अगले पीर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला ने नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। पाक बहरिया के सरबराह को सऊदी अरब के आला तरीन फौजी एजाज से नवाजा गया है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के लिए बोगियों और इंजनों की पहली खेप आज लाहौर पहुंच गई। अमेरिका के शहर लॉस वेगास में मौसीकी के प्रोग्राम में अंधाधुंध फायरिंग से 20 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। अबुधाबी टेस्ट में क्रिकेट टेस्ट मैच के पांचवें रोज श्रीलंका ने पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 136 रन का हदफ दिया है।
सामिन, ये तो था अहम खबरों का खुलासा। यहाँ पे लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
ए दुनिया के मुनसिफों, सलामती के जामिनों, कश्मीर की वादी जल रही है कई दहाइयों से। भारतीय रियासती दहशतगर्दी का शिकार मकबूजा कश्मीर के मासूम और बेगुनाह शहरियों का लहू सलामती के जामिनों आपको पुकार रहा है। मकबूजा कश्मीर के निहत्ते अवाम सलामती काउंसिल की पास शुदा करारदादों पर अमल दरामद के मुंतजर। रेडियो पाकिस्तान के न्यूज और करंट अफेयर्स चैनल से सुनिए इतवार शाम 5:05 से 6 बजे तक खसूसी प्रोग्राम ए दुनिया के मुनसिफों। रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज, हर दम हर लम्हा आपके साथ।
वेलकम बैक, रेडियो पाकिस्तान का न्यूज एंड करंट अफेयर चैनल है और इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड आप सुन रहे हैं। 0519215377892153789207992059200। चारों टेलीफोन लाइन्स कुछ देर के लिए ऑफ कर दी गई हैं क्योंकि अभी हम आपको लिए चलेंगे सेगमेंट की जानिब और आज सेगमेंट आपके लिए पेश किया जाएगा स्पोर्ट्स गैलरी और स्पोर्ट्स गैलरी में आज आप सुनेंगे रेड कार्ड की दास्तान नुमान खान की कलम से नुमान खान की जुबानी। तो आइए सुनते हैं स्पोर्ट्स गैलरी।
सुर्ख रंग तेजी की अलामत है, जहां भी ये रंग नजर आता है फौरन अपनी पहचान करवाता है। खतरे की अलामत समझा जाने वाला ये रंग खेलों की दुनिया में भी दिखाया जाता है। रेड कार्ड का नाम आते ही जहन में खिलाड़ी का फाउल, एम्पायर की नाराजगी, फैंस का गुस्सा सब आ जाता है। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में रेड कार्ड की इब्तदा फुटबॉल के मैदानों से हुई। 1966 के फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना आमने सामने थे। मैच के दौरान एम्पायर ने अर्जेंटाइन के प्लेयर को बाहर भेजा और इसके साथ इंग्लिश प्रेस पर भी एम्पायर ने काफी बदहमी का इजहार किया। मैच के बाद इस इशू पर काफी लेदे हुई। फीफा की तरफ से रेफरी कैन ऑस्टन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि इस मामले का बगौर जायजा लें। ऑस्टन ने काफी सोच विचार के बाद इस बुनियाद पर कि ये ट्रैफिक रूल्स की बुनियाद बनाकर यानी रेड, ग्रीन और येलो कलर्स को खेल का हिस्सा क्यों ना बनाया जाए। रंगों की इस जबान को पहली बार 1970 में मैक्सिको में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप का बाकायदा हिस्सा बनाया गया। यूं पिछले 47 सालों से खेलों की दुनिया में ये रंग प्लेयर्स के मिजाज को जांचते हुए दिए जाते हैं। स्पोर्ट्स गैलरी में आज सिर्फ रेड नहीं बल्कि व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक कार्ड का भी तस्करा होगा। सबसे पहले जिक्र येलो कार्ड से। इब्तदाई तौर पर खिलाड़ी को तंबी देने के लिए एम्पायर जबानी तौर पर आगाह करते हैं, मगर प्लेयर ना माने तो फिर येलो कार्ड पहली सीढ़ी है। फुटबॉल का खेल जहां प्लेयर फिजिकली एक दूसरे के साथ बहुत उलझते हैं, बॉडी डॉज से भी काम लिया जाता है, एक दूसरे को गिराने के वाकयात बहुत आम हैं। इसीलिए एम्पायर पहले प्लेयर को खबरदार करते हुए उन्हें नोटबुक में इसकी तफसील कराते हैं। अगर दोबारा वार्निंग मिले तो फिर येलो कार्ड। इस पर भी खिलाड़ी इसको नजरअंदाज करे तो रेड कार्ड से उसे वापसी का परवाना थमा दिया जाता है और प्लेयर को मैदान बदर होना पड़ता है। येलो कार्ड दिया जाता है ट्रैक एंड फील्ड में भी। ریسنگ ٹریک پر کھلاڑی اپنی پوزیشن لیتے ہیں 1-2-3 کے ساتھ ہی, اور پھر ساتھ ساتھ فائر اور ریسر اپنا دوڑنا شروع کرتے ہیں, مگر فالس سٹارٹ بازو کا اسپرنٹر کرتے ہیں, یعنی فائر سے پہلے ہی بھاگنا, پوزیشن صحیح نہ لینا اور امپائر کو چیٹ کرتے ہوئے دوڑنا کہ کسی طرح فنشنگ لائن تک پہلے پہلے رسائی حاصل کر لی جائے, یہ سب یلو کارڈ کے زمرے میں آتا ہے. بیڈمنٹن کے کھیل میں بھی یلو کارڈ کا استعمال ہے. انفرادی طور پر ٹیم وائز پلیئرز اگر اس کھیل کے قوانین کو توڑتے ہیں تو پھر یہ پینلٹی انہیں برداشت کرنا ہوتی ہے. بینڈی کا کھیل بھی ہے, اگر آپ ٹیکنیکل فاؤل کے زمرے میں آئیں تو یلو کارڈ آپ کے ساتھ ہوگا. پولو کا کھیل بھی یلو کارڈ سے ہی جڑا ہے. بادشاہوں کے اس کھیل میں اگر کھلاڑی ڈینجرس فاؤل کریں جو کہ دوسرے پلیئر کو یقینی گول سے روکنے کی برداشت میں, انہیں برداشت کرنا پڑے گا. یلو کارڈ کی شکل میں ساتھ ساتھ گھڑ سواری کے کھیل میں, جسے ایکویسٹیرین سپورٹس کا نام دیا گیا ہے, کھیل کے دوران امپائر سے بدتمیزی کا مظاہرہ کرنا, اپنے گھوڑے کو بہت زیادہ چابک سے مارنا, خطرناک انداز سے گھوڑے کو دوڑانا, یہ سب فاؤل کہلاتے ہیں اور ملتا ہے شاہ سوار کو پیلے رنگ کا کارڈ.
سلسلہ بھی جاری ہے, لیکن تازہ ترین میچ کی صورتحال آپ کو بتاتے چلیں. اس وقت حارث سہیل جو ہیں وہ آؤٹ ہوئے ہیں, اور حارث سہیل کے ساتھ حسن جو ہیں ان کا ساتھ نبھا رہے تھے, لیکن حارث سہیل جو ہیں وہ 34 رنز بنا کر جو ہے پویلین لوٹ گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ میچ کی کیا صورتحال آگے ہوگی. آئیے آپ کو دوبارہ لیے چلتے ہیں سپورٹس گیلری کی جانب.
گرین کارڈ کا استعمال فیلڈ ہاکی میں بھی ہوتا ہے. 2 منٹ کے لیے پلیئر کو آؤٹ کرنے کے ساتھ 3 کونوں والا گرین کارڈ دیا جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ کوچ کو بھی وارننگ دی جاتی ہے. ایتھلیٹکس میں فالس سٹارٹ تو پولو میں بہت زیادہ بجٹ بحث کے ساتھ ریفری سے الجھنے کی پاداش میں گرین کارڈ مل جاتا ہے. وائٹ کارڈ بھی سپورٹس میں دیا جاتا ہے. بینڈی کے کھیل میں 5 منٹ کی سسپینشن ہوتی ہے ریفری کی جانب سے سفید کارڈ کے بعد. اب باری ہے بلو کارڈ کی. بینڈی کا ہی کھیل کہ جس میں 10 منٹ کی سسپینشن ہے, اس دوران متبادل کھلاڑی ٹیم میں بلانے کے اہل نہیں ہوتی. بلو کارڈ کا دوسرا استعمال ہوتا ہے انڈور سوکر میں. امریکہ میں کھیلے جانے والی اس سوکر گیم میں پلیئر کو 5 سے 2 منٹ تک کی پینلٹی ملتی ہے. خاص بات اس بلو کارڈ کے حوالے سے یہ کہ اگر متاثرہ کھلاڑی کی ٹیم پر اس دوران گول ہوتا ہے تو پھر ٹیم کی مدد کے لیے کھلاڑی فوری طور پر میدان میں واپس بلایا جا سکتا ہے. ہینڈ بال کے کھیل میں بھی بلو کارڈ کا استعمال ہے. اس کھیل میں پہلے ریڈ کارڈ اور اس کے بعد بلو کارڈ سے پلیئرز کو آزمایا جاتا ہے. مختلف کارڈ کی کہانی ہم نے آپ تک پہنچائی, اور ساتھ ساتھ جہاں پر ہم نے بات کی گھڑ سواری کے حوالے سے ہم بات کریں گے. تیر اندازی یعنی فینسنگ کے کھیل میں بھی یلو کارڈ تیر اندازوں کے دل پر تیر چلانے کے لیے کافی ہوتا ہے. دونوں پلیئرز کا آپس میں نچنے کی کوشش کرنا, ریفری کی پہلی کال پر سامنے نہ آنا, تیر انداز کے لگائی ہوئی ضرب کو خطرناک قرار دیتے ہوئے اسے فوری طور پر منسوخ کرنا فالٹ کے زمرے میں آتا ہے. اور اب ذکر ہوگا فیلڈ ہاکی یعنی پاکستان کے قومی کھیل کا. پاکستان کے قومی کھیل ہاکی میں کارڈز کا استعمال کافی ہوتا ہے. پہلی منزل میدان سے باہر ہونے کے لیے 5 منٹ کی سسپینشن, جبکہ اس میں مزید اضافہ امپائر کی اپنی مرضی پر ہوتا ہے. کھلاڑی اگر دوبارہ غلط ٹیکل کرے تو پھر دوبارہ یلو کارڈ حاضری خدمت, جس میں بعض اوقات ایک پلیئر کو کافی دیر تک میچ کو بینچ پر بیٹھ کر ہی دیکھنا ہوتا ہے. اور آخر میں سنیے کچھ ذکر بلیک کارڈ کا. تیر اندازی میں بلیک کارڈ آپ کا منتظر ہوتا ہے. تیر انداز اگر بہت بے رحمی سے اپنا وار کرے, سیلوٹ کرنے سے انکار یا پھر ہاتھ ملانے سے گریز کرے تو اس صورت میں بلیک کارڈ خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. فوری طور پر فینسر کو کھیل سے علیحدہ ہونا پڑتا ہے. بلیک کارڈ کا دوسرا نشانہ ہوتے ہی شٹل کاک اور ریڈ سے ناتا جوڑنے والے بیڈمنٹن کے پلیئرز کو بھی بلیک کارڈ اسپورٹس میں دیا جاتا ہے. کھیل کا میدان عزم و ضبط آپس میں پیار محبت اور سب سے بڑھ کر برداشت کا مادہ پیدا کرتا ہے. کھیل میں گمنا گرم ماحول میں پھولتی سانسوں دہتی آنکھوں کے ساتھ پسینے سے شرابور ماحول میں کھلاڑی اگر اپنا ٹیمپر لوز کرتے ہیں تو پھر ملتی ہے پینلٹی. جی ہاں, یہی وہ پینلٹیاں ہیں جن کا ذکر ہم نے آج سے یہ کیا. رنگوں کا یہ کھیل پلیئر سمیت سبھی فینس کو بہت زیادہ مایوس کرتا ہے, مگر یہ سب کچھ پلیئر اور کھیل کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. یہ صرف اسی لیے پلیئر کو سبق دیا جاتا ہے کہ جوش کے ساتھ ہوش سے کام لیں, اگر ایسا نہ کیا تو پھر یہ رنگ آپ کے ساتھ ہوں گے.
گیلری میں ریڈ کارڈ کے ساتھ ساتھ مختلف کلرز کے کارڈز کی داستان آپ نے سنی نعمان خان کی قلم سے, نعمان خان کی زبانی. اور اس وقت پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ابوظہبی ٹیسٹ کی سیکنڈ اننگز جاری ہے. پاکستان اس وقت بیٹ کر رہا ہے, 100 رنز کمپلیٹ کیے ہیں اور 7 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں, اور بہت ہی پریشر میں ٹیم ہماری کھیل رہی ہے. بہت سی غلطیاں جو ہیں وہ ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہیں. محمد عامر آئے ہیں اب اور 2 رنز بنانے میں ابھی تک کامیاب ہوئے ہیں. حسن 8 رنز بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. حارث کی جگہ جو ہے محمد عامر نے اب سیٹ اپنی سنبھالی ہے, اور بہت سی غلطیاں حسن اور محمد عامر کی طرف سے دکھائی دے رہی ہیں. نعمان, جس طرح سے میچ دکھائی دے رہا ہے, اس طرح سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ میچ ون کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے؟
راحت, ہماری دعائیں تو ظاہر ہے اپنی قومی ٹیم کے لیے ہی ہوں گی, لیکن جس طریقے سے پاکستان کی ٹیم اس وقت فیس کر رہی ہے, جو صورتحال اس وقت میچ کی بنی ہوئی ہے, پاکستان کو ایک ایک رن بنانا اس وقت بے انتہا مشکل ہو رہا ہے. اور 36
مسلسل شاٹس کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے,
اور اس کا ریزلٹ ایک اور ہم آپ کو بتاتے ہیں. 8ویں وکٹ گری ہے جی, حسن علی کلین بولڈ ہو کر اب پویلین جا چکے ہیں, اور مکی آرتھر کا فیس فوری طور پر جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے, اور مکی آرتھر نے اپنی آنکھیں بند کر لی کہ شاید وہ اس نظارے کو جو ہے وہ دیکھنا بالکل پسند نہیں کریں گے. اور
ان کے لیے بھی کافی مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں, مکی آرتھر کے لیے بھی. ان کے چہرے سے جس طرح سے عیاں ہو رہا ہے کہ یہ میچ جو ہے اب ان کے ہاتھوں سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے.
جی بالکل, تقریباً یہ میچ پاکستان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے. کرکٹ بہرحال ایک بائی چانس گیم ہوتا ہے, لیکن جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے وہ بالکل پاکستان کو فیور نہیں کر رہی, اور سری لنکا کی ٹیم پوری طریقے سے کھیل پہ حاوی ہے. اور یہاں ہم نے جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ رنگنا حراج جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہمیشہ سے اچھا پرفارم کرتے آئے ہیں. ان کے ہم تھوڑے سے اسٹیٹس بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیوں رنگنا حراج جو ہیں وہ پاکستان کے لیے اتنا بڑا
جب ان کی کمپلیٹ جو ہے وہ لے کر آئے نعمان, تو اس میں ان کے جو بیان ہیں وہ بھی ضرور شامل کیجیے گا. کیونکہ رنگنا حراج جو ہیں وہ پاکستان کے میچ کو بڑی دلچسپی سے کھیلتے ہیں. وہ کہتے ہیں جتنا مجھے پاکستانی بیٹس مین کو شکار کرنے میں مزہ آتا ہے, کسی بھی ٹیم کے بیٹس مین کو شکار کرنے میں اتنا مزہ مجھے کبھی نہیں آیا.
اور اس کی ایک بڑی مثال اظہر علی ہیں. اظہر علی کو جو پچھلے ہم 5 ٹیسٹ کھیلے ہیں سری لنکا کے خلاف, اس کی 7 اننگز میں 7 بار رنگنا حراج نے اظہر علی کو آؤٹ کیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رنگنا حراج کا پریشر جو ہے وہ سر چڑھ کے پاکستانی بیٹس مینوں پہ بول رہا ہے. اور وہ جو ہم بات کر رہے تھے راحت, کہیں نہ کہیں سرفراز کی کیپٹنسی جو ہے ہمیں اب اس پر بھی ایک سوالیہ نشان دکھائی دے رہا ہے کہ
ایک ہی کیپٹن پہ ڈفرنٹ کرکٹ کی ذمہ داریاں عائد کرنا, اب تھوڑا سا یہ لگ ضرور رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پرابلم ہمیں ضرور فیس کرنی ہوگی, کیونکہ تینوں فارمیٹ ڈفرنٹ ہیں, T20, اس کے بعد ون ڈے اور اس کے بعد ٹیسٹ. اور یہ پہلا ٹیسٹ ہے جو پاکستانی ٹیم جو ہے وہ کیپٹن سرفراز کی قیادت میں کھیل رہی ہے, اور کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں سرفراز. مزید اس پر بات کریں گے.
جی راحت, بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں رنگنا حراج اور پاکستانی بیٹس مینوں کا. انہیں پتا ہے کہ ٹیل اینڈرز کے خلاف وکٹیں کیسے لینی ہیں, کس لائن پہ بال کرنی ہے. وہ اپنے پورا جو ایکسپیرینس ہے وہ پورا پاکستانی بیٹس مینوں پہ اپلائی کر رہے ہیں, اور سخت مشکلات میں پاکستان کو ڈال کر. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو 36 رنز کوئی بہت بڑا ٹارگٹ نہیں ہے جن کو اچیو نہ کیا جا سکے, لیکن اب جس صورت حال میں پاکستان کھیل رہا ہے اس میں پاکستان
کا جو سکور ہے وہ ون ڈے کرکٹ میں بھی مشکل نہیں ہوتا, جس میں ایک محدود آپ کے پاس بالز رہ جاتی ہیں اور سکور زیادہ ہوتا ہے, لیکن آپ اس محدود بالز میں بھی کوشش کرتے ہیں وہاں تک پہنچنے کی, اس کو چیز کرنے کی. टेस्ट जो है वो तो ओपन है, आपको बॉल्स का आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि मेरे पास इतनी बॉल्स रह चुकी हैं, लेकिन ठीक है टाइम थोड़ा आपके पास क्लोज जरूर है, लेकिन अभी 100 है और 36 रन्स को बनाना, मेरा ख्याल है कि हमारे बहुत सारे बॉलर्स ने भी बाज दफा ये कारनामा सर अंजाम दिया है।
जी बिल्कुल टेल एंड, लेकिन बात यह है कि इसके लिए बड़ा ब्रेव क्रिकेट चाहिए, ब्रेव माइंड चाहिए कि आपने शॉर्ट्स पे भी जाना है और कैसे आगे निकल के खेलना है। और सरफराज यकीनन देख रहे होंगे कि जिस तरह से वो खेल रहे थे और जो शॉट उन्होंने खेला है और पूरी देखिएगा कि क्रीज छोड़ कि वो बहुत आगे तक जा चुके थे। वही बात हम करेंगे कि सरफराज का जो एक अपना स्टाइल है खेलने का, जिस तरीके से वो तेजी से खेलते हैं वही उन्होंने फॉलो किया और रंगना हेराज ने उनको डिसीव भी किया।
शॉर्ट ब्रेक की जाने मुझे चलना है, बार बार कहा जा रहा है कि जी शॉर्ट ब्रेक को भूल गई आप, तो इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग जारी है, हसन और यासर इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, यहां पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
आ अंदलीब मिलके करें आहोजारियां, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय दिल। उर्दू जबान कौम की पहचान, उर्दू अदब तहजीब व सकाफत का शाहकार, कौमी यकजहती का अलमबरदार, तहजीब के रंग बिखेरने, कौमी यकजहती की अक्कासी करने और अवामी उमंगों के सुर छेड़ने के लिए रेडियो पाकिस्तान पेश करता है अदब रंग। सुनिए उर्दू अदब के सुर प्रोग्राम अदब रंग में हर इतवार की रात 10:05 से 11 तक सिर्फ रेडियो पाकिस्तान के न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल पर। गांव के चौबारे की खुशगपियों में, हुजरे के कहवे की मजलिस में, औताक में मेहमानों की हमनशीनी में और गिदान की चाय की महफिल में रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज हर दम हर लम्हा आपके साथ।
रेडियो पाकिस्तान के न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल से आप सुनते हैं प्रोग्राम नया दिन, पीर से हफ्ता तक सुबह 10:05 से 11 तक। इस प्रोग्राम में आप सुन सकते हैं दुनिया में रोनुमा होने वाले अहम वाकयात, कराची से खैबर तक वतन अजीज का हाल अहवाल और मुल्की व बैनुल अक्वामी उमूर के माहिरीन की खुसूसी तज्जिये। आप घर में हैं या सफर में या कर रहे हैं खेतों में काम, रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज हर दम हर लम्हा आपके साथ।
रेडियो पाकिस्तान का न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल आपके लिए पेश करता है मॉर्निंग शो सुबह बखैर पाकिस्तान, रोजाना 8:10 से 10 तक, जिसमें आप सुन सकते हैं अहम कौमी और बैन अलाक़वामी खबरें और उन पर तज्जिये, मुल्क भर से हमारे नुमाइंदों की बराह रास्त रिपोर्ट्स।
आज का दिन तारीख के आईने में साइंस और टेक्नोलॉजी की खबरें, तिजारती दुनिया का हाल, खेल के मैदान से ताजा तरीन मालूमात और मौसम का हाल।
न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल आप तक पाकिस्तान और दुनिया भर से ताजा तरीन मालूमात पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया।
रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज हर दम हर लम्हा आपके साथ।
वेलकम बैक। रेडियो पाकिस्तान का न्यूज एंड करंट अफेयर चैनल है। इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड आप सुन रहे हैं। अपनी मेजबान राहत खान नुमान खान के साथ इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 102 रन पाकिस्तानी टीम बनाने में कामयाब हुई। 8 खिलाड़ी आउट और इस वक्त क्रीज पर हसन और यासर मौजूद हैं। एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। कैसे हैं
जी? कौन बात करें और कहाँ से? जी कहिए, क्या कहेंगे?
नुमान खान को कैसे सलाम कहना चाहता हूँ।
जी 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 भाई, कैसे हैं आप?
अल्लाह के करम। नुमान भाई, ये कहना चाहता है कि हम तो आपसे बहुत मशहूर है, हम जो अपडेट देते हैं और स्पोर्ट्स के प्रोग्राम है जी, स्कूल आपने, लेकिन आपसे अपील है कि जल्द जल्द हमको अपडेट दे दीजिए, क्योंकि ये सबसे मुश्किल नहीं है पाकिस्तान और हमको भी
आवाज कुछ सही तौर से। हम तो बहुत शुक्रिया वैसे पहले आपकी कॉल का। और कुछ
नुमान, अभी आपने कुछ कार्ड्स का जिक्र किया और कुछ देर पहले मैंने अपने सामिन तक भी ये खबर पहुंचाई थी कि आईसीसी के इजलास में जो है वो कुछ नए कवानीन का इनाकात किया गया है, रेड कार्ड शामिल किया गया है कि अब जो भी प्लेयर जो है वो अंपायर के साथ बदतमीजी करेगा, ये अथॉरिटी अब अंपायर को दे दी गई है कि वो अगर चाहेगा तो उसको ग्राउंड से जो है वो जाने के लिए कहा जा सकता है, उसे भेज सकता है वो।
अच्छा, और इसमें एक और बड़ी दिलचस्प
कॉलर है, उनको पहले शामिल कर लें, उसके बाद इस पे तफसीरन में आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से?
मैं जिला करीम बात कर रहा हूँ।
जी कहिए, क्या कहेंगे?
स्कोर कार्ड बताऊं
और अभी बताऊं। चले जी, अभी सुन लें आप स्कोर कार्ड। 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। पहले शान मसूद और समी असलम आउट हुए थे। शान मसूद 7 पे, समी असलम 2 पे, असद शफीक 20 पर, अजहर अली 0 पर, बाबर आजम जो है वो 3 रन पर, और इसके साथ साथ हारिस जो है वो 34 रन पर आउट हुए, और फिर सरफराज आउट हुए हैं और वो हमें बताएंगे जल्दी से नुमान के सरफराज जो हैं वो कितने रन पर आउट हुए हैं। और इस वक्त यासिर और आमिर क्रीज पर मौजूद हैं। यासिर 2 रन बनाने में कामयाब हुए हैं और आमिर
कुल टोटल स्कोर कितना है?
टोटल स्कोर जो है वो 102
है। अभी 34 रन पाकिस्तान ने और बनाने हैं। ठीक है जी,
8 खिलाड़ी आउट है।
8 खिलाड़ी आउट हो गए जी। अब दोनों टेल एंडर हैं।
यासिर आमिर, यासिर यासिर शाह मोहम्मद आमिर मौजूद है
जी। आमिर और यासिर शाह खेल रहे हैं।
अच्छा, कम दे दिया है
जी। चले जी, और
जी, और अलीम डार काफी अंडर प्रेशर रहे हैं माजी में अगर देखा जाए नुमा, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो हैं वो काफी उन्होंने अंडर प्रेशर रखा है। बहुत सारे जो अंपायर हैं उनको शिकायत रहती है, जितने भी हमारे प्लेयर हैं।
बिल्कुल, रिकी पॉन्टिंग का और अलीम डार का एक झगड़ा बहुत ज्यादा वो इन हुआ था और फिर काफी ज्यादा वो सोशल मीडिया पे उसकी खबरें भी गई थी।
अस्सलाम वालेकुम।
जी
वालेकुम अस्सलाम।
जी मैं इरफान बात कर रही हूँ।
जी इरफान, जल्दी से कहिए, क्या कहेंगे?
जी सवाल का जवाब है, नलिन विकट खिलाड़ी का नाम याद नहीं है,
वो तो काफी टाइम पहले
जवाब वो खिलाड़ी हैं, वो रिकॉर्ड अभी भी चेंज हो गया है।
मैच तो बता दीजिएगा।
अच्छा ठीक है जी, बिल्कुल बताते हैं।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया
जी।
इंग्लैंड और के मैच की और वेस्ट इंडीज की
जी, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान जी जो चौथा वनडे हुआ वो वेस्ट इंडीज की टीम हार गई है। इंग्लैंड ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की है जी। वेस्ट इंडीज ने पहले 288 रन 6 विकेट पे स्कोर किए, शाय होप ने 72 रन उसमें स्कोर किए, गेल ने 40 किए और काय होप जो हैं उन्होंने 33 रन बनाए। और जो जवाब आया जी इंग्लैंड की तरफ से वो जॉनी बेयरस्टॉ की सूरत में था। बेयरस्टॉ ने 17 चौकों की मदद से 114 बॉल्स पर 141 रन नॉट आउट किए। जॉय रूट ने 46 रन स्कोर किए और ओपनिंग में जॉय रूट जो हैं जेसन रॉय वो जी 96 रन बनाकर आउट हुए और उन्हें कमिंस ने LBW किया। यूं इंग्लैंड ने 288 रन 6 विकेट का जवाब 294 रन 1 विकेट के साथ दिया और 9 विकेटों के साथ इस मैच को जीत लिया और 4-0 की बढ़तरी वेस्ट इंडीज पर हासिल कर ली। अब हम बात करेंगे जी साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के माबैन जो मैच है उसकी। اگر ہم بات کریں تو راحت کافی دلچسپ صورتحال رہی ہے ان تمام میچز میں, اور ساؤتھ افریقہ جو ہے اس نے بیٹ کر دیا ہے جی بنگلہ دیش کی ٹیم کو. ساؤتھ افریقہ نے جو ہے وہ 333 رنز کے مارجن سے اس میچ کو ون کیا ہے. اور راحت بنگلہ دیش کی ٹیم جیسے کہ میں نے پہلے بھی ابھی پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ انہوں نے فرسٹ اننگ میں 320 کیے اگینسٹ ساؤتھ افریقہ, اور دوسری اننگ میں راحت 90 رنز پر ان کی پوری ٹیم بیک ٹو پویلین ہوئی. تو یہ ایک بڑا ابھی تک وہ اس چیز سے باہر نہیں نکل سکے ہیں کہ سیکنڈ اننگ کو کیسے کھیلنا ہے آپ نے, وہ پریشر جو ڈیولپ ہو رہا ہے پلیئرز کو کیسے نکلنا ہے. وہی پلیئر ہیں جو 350 کر رہے ہیں, اور وہی پلیئر ہیں جو اب 90 پہ پوری کی پوری ٹیم جو باہر جو ہے وہ بیٹھ گئی.
ایک اور آؤٹ کی اپیل کی گئی ہے اور تھرڈ امپائر کے پاس فیصلہ پہنچا دیا گیا ہے, دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا آتا ہے.
جی راحت ہم بتاتے چلیں جی, اور ساؤتھ افریقہ بنگلہ دیش کی نکل سے بات کی, اور راحت آپ کچھ
کامن ویلتھ گیمز کی شمع پاکستان کے شہر لاہور حضوری باغ میں جو ہے وہاں پر اس کا انعقاد کیا گیا, نعمان اس حوالے سے بتائیے گا.
جی بالکل, کامن ویلتھ گیمز کا جی 21st ایڈیشن ہے کہ جو اسٹیج ہونے جا رہا ہے, اور کافی زیادہ جوش و خروش جو ہے وہ پاکستان میں پایا جاتا ہے جی. اور آسٹریلیا میں راحت اگلے سال اپریل میں جو ہے یہ کامن ویلتھ گیمز کا انعقاد ہو رہا ہے, اور مختلف شہروں سے یہ جو ہے بیٹن جو ہے وہ گزاری جا رہی ہے.
بالکل,
اور اب جو ہے وہ پاکستان کی باری ہے, اور اس میں جی پاکستان کے وہ ایتھلیٹس کے جنہوں نے کامن ویلتھ گیمز کے ساتھ ساتھ دوسرے بڑے ایونٹس میں میڈلز حاصل کیے ہیں وہ اس کے ممبر وہاں پر
موجود ہیں,
وہاں پر, اور تقریب کی رونق جو ہے اس میں اضافہ کر رہے ہیں. ہم بات کریں گے کچھ پاکستان کرکٹ کی ویمن کرکٹ کے حوالے سے
جی,
کہ
ثنا میر
جی ثنا میر
گردش میں آ چکا ہے, اور وہ کچھ خود بھی کافی زیادہ خبروں کی زینت بنی رہی ہیں پچھلے دنوں میں, اور اب مکمل طور پر جو ہے انہیں ٹیم سے نکال دیا گیا ہے, اب ٹیم کا حصہ وہ نہیں ہے
جی. اور لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایز اے پلیئر جو ہے دستیاب ہوں گے, اگر انہیں سلیکشن کمیٹی چاہے تو وہ انہیں چوز کر سکتی ہے. اور ثنا میر نے سے پہلے کیمپ جوائن کرنے سے انکار کیا, اس پر پھر پی سی بی نے اپنا ایکشن لیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ثنا میر
نہ صرف انہوں نے خود کیمپ نہیں جوائن کیا بلکہ دوسرے پلیئرز کو بھی جو ہے اس میں انوالو کرنے کی کوشش کی کہ وہ کیمپ کو جوائن نہ کریں, لیکن باقی پلیئرز نے جو ہے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے کیمپ میں جو ہے وہ پہنچی, اور وہاں پہ جو بھی ٹریننگ سیشن کروائے گی ان کے وہ حصہ بنی رہے.
بالکل جی, اور
تھرڈ امپائر کے فیصلے سے ہمارے سامعین کو بھی آگاہ کر دیا جائے جی, تھرڈ امپائر کے پاس جو فیصلہ پہنچا تھا اب وہ آ چکا ہے کہ کھلاڑی آؤٹ نہیں ہے, لیکن جس طرح کی صورتحال ابھی دکھائی دے رہی ہے لگتا ہے کہ یہ اب فیصلہ جو ہے وہ چینج ہونے والا ہے کافی, کیونکہ یاسر شاہ جس طرح سے جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اتنے کم فاصلے پر بال ہے اور وہ پھر بھی رنز لینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس طرح کی غلطیاں اکثر بالرز کو کامیاب کر دیتی ہیں.
بالکل, اور اس صورتحال میں اکثر پلیئر جو ہیں وہ رن آؤٹ ہو کر جو ہے اپنی
شائقین جو ہے وہ کافی افسردہ ہیں جو گراؤنڈ میں موجود ہیں, چہرے جو ہیں وہ کافی ان کے افسردہ ہیں, اور بہت سارے ایسے شائقین جو ہمیں سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں کہ بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی وہ بس رونے کی صورتحال ان کے اوپر ہے. اور یہ ٹیسٹ جو میچ جو ہے یہ پاکستان کو جیتنا ہی چاہیے تھا کیونکہ بہت کم سکور تھا.
بالکل راحت, ایک بہت لو سکورنگ ٹوٹل پہ, اور اس پہ جس طریقے سے پاکستان نے ریئیکٹ کیا ہے, اور
کیونکہ بڑی امیدیں لے کے نوانا, ہم تو سکرین پر ابھی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے اس میچ کو دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھیں جو ایفرٹ کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں اور گراؤنڈ میں بیٹھ کے میچ کو دیکھتے ہیں, اور پتہ نہیں کون کون سی امیدیں لے کر وہ گراؤنڈ میں جاتے ہیں.
بات یہ ہے کہ ابوظہبی کے میدان میں یو اے ای کے جتنے بھی ہیں, جتنی اسٹیٹس ہیں یو اے ای کی, وہاں سے بھی جو لوگ ہیں کرکٹ کے جو دیوانے شائقین ہیں وہ وہاں پر پہنچتے ہیں.
جی اسام الحق کو چین میں جو ہے وہ چین کیسے ملا یہ کل کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے. اس کے ساتھ ہی اسپورٹس ورلڈ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, سبھی سامعین کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اسپورٹس ورلڈ میں ہمارا ساتھ دیا, امید کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے.